भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुनकुन देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथ राज में मोक्ष अधिकार गाथा 294 गाथा का पाठ करते हैं। पहले जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्खणे क्षणी शब्द आया, जैसे बताया ना अंतर्मुख ढला हुआ ज्ञान, जो बताया थी श्रीमद जी की पंक्ति, अनादि काल से जो ज्ञान भव हेतु होता था वह ज्ञान एक समय मात्र जात्यंतर होने पर भव निवृत्ति स्वरूप हो गया। ज्ञान राग और परगे में एकत्व बना करता था तो मिथ्यात्व संसार का कारण था, और उस ज्ञान ने राग के साथ मैत्री भाव को तोड़कर ज्ञान ज्ञायक में अभेद हो गया तो भव निवृत्ति का कारण हो गया, क्योंकि भगवान आत्मा में भव नहीं है और ज्ञान ज्ञायक में अभेद होता है तो भव बिना की चीज का पत्ता लगे और फिर पर्याय में भव भ्रमण करना पड़े ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कारण अनुविधायी कार्याणि, समय सार की जो पहला कलश अपने मंगलिक में बोला नमः समय सारा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ ये नमः समय सारा है वो प्रज्ञा क्षणी है कि क्या है? क्या है नमः समय सारा है? मंगलिक में सबसे पहले दो अक्षर नमः झुकना ढलना, समय सार माने शुद्धा योग का अंदर में झुकना, बाहर में ऐसे नमन करने वाली बात नहीं, नमः समय सारा है। वो तो प्रज्ञा छीनी हो गई ना, और क्या है? स्वानुभूतियाँ चकासते, माने वो शुद्धात्मा कैसे अनुभव में आता है, मतलब स्वानुभूतियाँ चकासते, स्वानुभूति में वो जानने में आता है समय सा शुद्धात्मा, राग द्वारा वो जानने में नहीं आता है। राग भी है और शुद्ध आत्मा भी है, लेकिन राग शुद्ध आत्मा को जानने का करण नाम साधन नहीं है। शुद्ध आत्मा को जानने का साधन नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन राग साधन नहीं है। शुद्ध आत्मा को जानने का करण साधन क्या, तो प्रज्ञा क्षेणी माने स्वानुभूतियां चकासते। स्वानुभूति में आत्मा अनुभव में आया तो कैसा है कि चित स्वभावाय भावाय, भावाय माने वस्तु द्रव्य, तो भावाय कैसा भावाय है, चित स्वभावाय, राग स्वभावाय जड़ स्वभावाय नहीं, चित स्वभावाय भावाय। स्वानुभूति में आत्मा जो जानने में आया नमः, तो इच्छित स्वभावाय भावाय, और उसका पर्याय का नेचर सामर्थ्य कैसा है कि सर्व भावांतर छिदे, कुछ भी जानने में बाकी नहीं रह जाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ और ऊंची गाथा है, अपनी ये बात भी दो दिन पहले चली थी कि आखिर राग से भेद ज्ञान क्यों करना। अज्ञानी को तो राग अच्छा लगता है, जो दौलत राम जी ने कहा ना, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। जिस राग से भेद ज्ञान करने की बात कह रहे हैं, अज्ञानी को वही राग कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो राग अच्छा है कि नहीं है, फिर से, राग से भेद ज्ञान करने की बात चल रही है प्रज्ञा श्रेणी में, राग को बाय बाय करना है, फिर राग आएगा नहीं, बाय बाय कर देंगे, तो फिर वीर ज्ञान करना है कि नहीं करना है। राग से वीर ज्ञान करना है, लेकिन अज्ञानी को तो राग अच्छा लगता है, तो राग अच्छा है कि नहीं है। शराबी जो व्यक्ति होता है, शराबी, उसको शराब कैसी लगती है, शराबी को शराब कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, अच्छी लगती है। शराब अच्छी है कि नहीं है, शराब अच्छी चीज है, नहीं है ना। तो शराबी जीव को समझाया जाता है कि देख भैया, ये शराब का सेवन करता है, तेरा शरीर तो देख कैसा हो गया है, तेरे परिवार की ओर देख, तूने क्या स्थिति कर दी है। हमारे गुजराती में दारूडियो दारू ने नहीं, दारू ये दारूडिया ने पी जाए से। तो शराबी को शराब से दूर करने की जब बात करते हैं कि शराब पीने जैसी चीज नहीं है, तो शराबी तो कहता है कि हमें तो शराब अच्छी लगती है, और कहीं कहने के लिए जाए ना तो आ भी गया पाछा समझाऊंगा, या आपसे एक पास चालू कर सके दारू ना पीवो जो ये, ऐसे ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञानी ये कहेगी कि राग दारू है, राग शराब है, कि फिर वही आत्मा की बात करेंगे तो राग से आत्मा जुदा है, तो ऐसे शराब अच्छी चीज़ है कि बुरी? कौन सा शराब अच्छा होता है? जो एकदम पुअर लोग पीते हैं और जो जिसे हाई फाई लोग में कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं ना, कौन सी शराब अच्छी होती है? तो कौन सा राग अच्छा होता है बोलो? नॉन वेज होटल में खाना चाहिए कि वेज होटल में खाना चाहिए? कौन सी होटल अच्छी होती है? कौन सी होटल अच्छी होती है वीर भाई? नॉन वेज अच्छी कि वेज होटल अच्छी बोलो? समझ में आती है ना बात? कि नहीं, हम तो नॉन वेज में नहीं जाते, हम तो वेज होटल में जाते हैं। अभी उससे तो हम वेद ज्ञान नहीं करा रहे हैं, तो दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि मुमुक्षु जी वहाँ थोड़े जाते होंगे, इसलिए वो तो बात नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं ऐसा हम समझ करके इसकी मांग कर रहे हैं। शुभ राग और अशुभ राग, उसमें से वेज नॉन वेज समझ गए ना आप? समझ गए ना कहने का आशय? पाप के परिणाम हिंसा, झूठ, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप के परिणाम है वो तो नॉन वेज जैसे। दृष्टांत दृष्टांत की तरह समझना है एक देश। और दया दान पूजा भक्ति के परिणाम तो हमें अच्छे लगते हैं। हम ये कहते कि राग है कि क्या है, हम ये नक्की करें ना पहले। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम है क्या, उसके पर ब्रांड किसकी लगी है? हाँ, सुबह में बताइए, हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड। हम कहते हैं तुझे ब्रांडेड की इतना क्या है, प्राउड है ना। हम पूछते हैं कि इसके पर ब्रांड चैतन्य की लगी है कि पुद्गल की, आप ये हमें बता दें। वो जो कंपनी वाला ब्रांड या जो गोदरेज या जो कुछ भी बाहर में जो अलग अलग ब्रांडेड होते हैं, ये कपड़े की भी जो ब्रांड हो गए, वो ब्रांड नहीं, इसके पर पुद्गल की लगी है कि चैतन्य की, आप तो हमें बताओ। पुद्गल की ब्रांड की, और उससे तो अपने को बड़ा मानता है। और ब्रांड की ही बात करते हैं तो ये द्रव्य स्वभाव में तो चैतन्य की ब्रांड लगी है मेरे में तो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख। राग किसी भी प्रकार का होवे, शुभ होवे कि अशुभ होवे, जैसे कहते हैं ना, लकड़ी चाहे बबूल की होवे या चंदन की होवे, दोनों ही लकड़ी जलाती है ना, तो नहीं चंदन की लकड़ी तो नहीं जलाती, ऐसा थोड़ा है। दोनों ही लकड़ी जलाने का काम करती है। ऐसे राग चाहे शुभ हो कि अशुभ हो, वो बंध का ही कारण है। राग कषाय है और कषाय से आत्मा को कष्ट ही पहुंचता है। ठीक है, सुशील जी संसार मां दाखल करें। एक तो बात अपन ने परसों स्वाध्याय में, परसों आई थिंक किया था स्वाध्याय अपना, कि भाई आखिर राग से भेद ज्ञान क्यों करना? तो एक दृष्टांत दिया था ना प्रथमान योग का, कि जिस माता को अपने बच्चे पर इतना राग था, वही माता दूसरे पर्याय में बागन बन गई और वही बच्चे को खा रही है। एक एक पुराण उठा, पुराण में उठा करके अपन देखे तो मालूम पड़ेगा कि क्या क्या स्थिति है। अब मैं तो दूसरी बात करना चाहता हूं इसके साथ में। तो ये जो थे वो तो अशुभ राग की बात थी। पांच पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कितने मोक्ष गए, कितने सर्वासिद्धि में है? तीन मोक्ष में गए, दो कहाँ है? दो सर्वासिद्धि में क्यों गए, मोक्ष क्यों नहीं गए? दो सर्वासिद्धि में क्यों गए, मोक्ष में क्यों नहीं गए? किसका फल है ये? चारित्र मोह के दोष वाला राग की अभी तो बात, इसकी ये राग मुनि दशा के परिणाम में देखो संज्वलन के शुभ राग, संज्वलन की कषाय इतनी पतली, संज्वलन कषाय के परिणाम जिसमें हे बुद्धि है उसमें ये नकुल और सहदेव को जो हमारे जो गृहस्थ अवस्था में भाई ऐसा नहीं साधर्मी जीव, इसके प्रति का ऐसे प्रशस्त शुभ राग के परिणाम उस राग का फल में भी उनके दो भाव बढ़ गए, दो भाव बढ़ गए ना, सर्वा सिद्धि में 33 सागर 33 सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य का एक सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य 10 के पीछे 14 जीरो लगाओ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य का एक सागर होता है और एक पल्ल्य के असंख्यात में भाग में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। अब समझना वो सागर कितना माप होता है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, एक पूर्व ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान है ना, कितनी आयु है 1 करोड़ पूर्व, ऐसे 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ नहीं संख्यात नहीं असंख्यात करोड़ पूर्व उसको असंख्यात बार मल्टीप्लाई करो, असंख्यात करोड़ पूर्व मल्टीप्लाई बाय असंख्या इज इक्वल टू 1 पल्ल्य, क्योंकि 1 पल्ल्य के असंख्यात भाग में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं, तो 1 पल्ल्य वो 1 पल्ल्य ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य तो 1 सागर ऐसे कितने सागर 33 सागर। ये राग, ये राग का फल, राग का फल। फिर वहां से आता फिर मनुष्य पर्याय, फिर मंडित सांगिकार करके जाना मोक्ष में।
लंबी
आयु के दरमियान नहीं, अभी क्या है कि देवायु है ना वहाँ, तो जैसे अपने मनुष्य और तिर्यंश में आकर्षण वगैरह होता है वहाँ वो प्रश्न नहीं है। देव नारकी जो भोग भूमि वाले हैं उनका आयु का आकर्षण जैसे अपने यहाँ हो जाए, समझे ना, ऐसे वहाँ होता नहीं है। जो वहाँ है जितनी बंदी है ना वहाँ खुली फिर जीवन, यहाँ जब बंद गई ना, समझो जैसे राजा श्रेणी के सापी नरक की आयु की स्थिति बंदी थी, फिर 3 दिन के बाद में उनके परिणाम सुलटे, तो 33 सागर से 84,84,000 वर्ष की रह गए। वो तो वहाँ जाने से पहले ही एक परिणाम सुधर गए तो वो पॉसिबल है, लेकिन एक बार वहाँ पहुँच गए ना, पहुँच गए फिर जितनी पूरी आयु है उतनी पूरी भोगते हैं, पूरी भोगते हैं वहाँ देवी में, तो फिर वहाँ गए ना सर, फिर तो फिर वो पूरी वहाँ तक की है उसकी जो माप है वो इस प्रकार का। सुनो कुशल में तो क्या है, बड़े थोड़ी मगर उसमें जाएंगे नहीं ज़्यादा, एक तो आयु कर्म की बात हुई ना, बाकी के जो कर्म है तो क्योंकि आयु कर्म की तो मैक्सिमम 33 सागर है, चारों गति के मैक्सिमम 33 सागर, बाकी के सोचे ना भाई ज्ञानावरण दर्शनान मोहनी अंतराय नाम गोत्र वेदनीय वो तो कोड़ा कोड़ी सागरों में है ना, जो है वो तो कोड़ा कोड़ी सागरों में है। खैर सुनो, हमें तो ये समझना है कि ये जो राग है, राग कल बताया था ना गुरुदेव जी का, काकड़ी ककड़ी के चोर को फांसी की सजा ऐसी नहीं है, माने चारित्र मोह के दोष वाला राग इसमें भी इतना लंबा संसार होता है, तो ये अज्ञानी जीव सोचे कि हमें 24 घंटे 24 आवर्स हम हमारा 24 आवर्स का एक क्या होते हैं पर एनालिसिस करें तो 24 घंटे में से अभी हे उपाधेय वाली बात तो छोड़ो, क्योंकि तुझे आत्मा उपाधेय ही नहीं हुआ है। क्योंकि जिसे भगवान आत्मा उपाधेय होता है ना, उसे राग हे होता है। परमात्मा प्रकाश आधार देखे गुरुदेव बहुत कहते हैं, राग हे 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 ऐसा नहीं हे होता है। आत्मा उपाधेय होता है तो राग अपने आप हे हो जाता है। अब समझना, एक अज्ञानी मोही जीव को तो शुभ राग और अशुभ राग का लिस्ट चेक करे ना 24 आवर्स का, शुद्ध का तो प्रश्न ही नहीं है, इसका तो भी ओपनिंग ही नहीं हुआ है। तो 24 आवर्स में से हम देखें तो अधिकांश हमारा समय कायले जाता है। जिसे गुरुदेव श्री कहा करते थे, 24 कलाक माथी 23 कलाक तो पाप, सोयनु दान ने एरणनी चोरी कहता था ना। एक कलाक स्वाध्याय करो, हमें गुरुदेव ने सीढ़ी सांभी है, एक कलाक स्वाध्याय करिए, बाकी सवारे हमारे 2 कलाक 3 कलाक तो मंदिर में पक्का, पची 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 मारे ऑफिसे जवा, पची सांजे आपता मोड़ू थी जाए, शाम को लेट हो जाता है, फिर शाम को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो जैसे वो 3 घंटे के शुभ परिणाम का तो फल का लिस्ट बनाता है, तो बाकी के 21 आवर का भी फल तो लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो 21 आवर तो तेरे पाप के हैं, अशुभ परिणाम है। सम्यक तो बिना के लिए बात कर रहे हैं, मिथ्या तो सही की बात, मिथ्यात्व का सबसे बड़ा पाप है वो तो सबसे बड़ा है। लेकिन और बाकी ऐसे चारित्र के संदर्भ से बात करें अपन शुभ और अशुभ की, क्योंकि मिथ्यात्व वाला तो श्रद्धा वाला दोष है, तो शुभ और अशुभ में अधिकांश तो तेरे पाप के परिणाम जाते हैं। खूब कहते हैं धर्म नहीं तो मात सुन कर लिया जो, तो एवं जीवन न हो जो पहला नंबर माता शरीर क्लास वगैरह ज्या हो, तो अपना अपने जीवन में ऐसे प्रसंगों में से यू टर्न आना चाहिए भाई। नहीं तो क्या है कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि तू पाप करता है, समझो चला गया नरक में, गुरुदेव बता दे लड़का बन गया असुर कुमार और तुझे मारने के लिए आएगा, फिर ये जो गृहस्थी के लिए तू राग करता है ना, कि नहीं हम तो बस अभी थोड़ा फैक्ट्री संभालते हैं वो करते हैं, अभी तुझे फैक्ट्री संभालना है कि शुद्धात्मा को संभालना है, नक्की तो कर। बात हुई थी ना अपनी, बच्चा 3 की जगह 3, 5 कही थे ना, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए उसके प्रति राग के कारण तूने तेरी दुर्लभ मनुष्य पर्या उसमें गंवा दी, और वही बच्चा बड़ा होकर के तुझे वृद्धाश्रम में भेज देता है, या वृद्धाश्रम में नहीं भेजे तो भी घर में उसका व्यवहार ऐसा होता है कि बार बार अंदर में फीलिंग होता है, अरे मैंने इसके लिए कितना किया, इसके लिए कितना किया, इसके लिए कितना किया। यहाँ जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि तुझे राग से भगवान आत्मा की प्रज्ञा छीनने का काम क्यों नहीं किया, ये नहीं किया ना इसलिए तुझे इसका अंजाम ये है भाई। इसलिए बार बार कहते हैं ये प्रज्ञा छीनी डालो ना तो फिर माता के उदर में आना ही नहीं पड़ेगा, जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा, वंदी तू सब सिद्धे में तू शामिल हो जाएगा। उपाय तो यही है, प्रज्ञा छीनी के अलावा ये उपयोग को अंतर्मुख ले जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और तू प्रतिकूलताओं को क्यों आगे करता है, सातवीं नरक में सम्यक तो लेके कोई जाता नहीं है, लेकिन वहां जाकर के सातवीं नरक में ऐसे असंख्यात नारकी हैं कि जिन्होंने वहां जाकर के प्रज्ञा छीनी डाली है, सम्यक तो अंगीकार कर लिया है, राग से आत्मा को जुदा कर लिया है, तेरे जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं तो नहीं है ना, उसके सामने कई सुविधाएं हैं, लेकिन असल में बात यह है कि तुझे अंदर में अपना आत्म कल्याण स्वानुभूति की जो धगस लगनी चाहिए, ये वास्तव में करने जैसा कार्य ये ही है, ऐसा अंदर में तेरा उपादान जागृत नहीं हुआ है। यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, नाचन क्या बोलते हैं, आंगन आंगन टेढ़ा, अपने गुजराती में कहते हैं खाटले खोड, खाटले खोड़ खटिया के जो चार पाया होते हैं ना, तो मॉनसून में क्या हो जाता है, हवा लग जाती है तो ऊंचा नीचे ऐसा होते हैं, तो इधर इधर थोड़ा सेट करते थे फिर सेट हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में एक खटिया का एक पाया ही बड़ा हो गए तो कितना ही करेंगे ना तो सेटिंग हलक ढुलक ही रहेगा ना। ऐसे वास्तव में तेरे में अंदर में तुझे करना नहीं है, एक होड़ है, इसलिए और न और कुछ न कोई ना कोई बहाना बना देता है। अभी दो तीन महीने पहले चैतन्य धाम में शिविर था ना, तो बहुत सारे लोग मतलब एप्लीकेशन पे हम आने वाले आने वाले आने हो, एकदम फुल हो गया था, रहने की व्यवस्था का समस्या हो गया, तो एक मजबूरी बस वहां से ऐसा भी कहना पड़ा कि भाई हम आपको कहाँ ठहरे, सब आसपास के भी सब फुल हो गए हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा हम आएंगे तो रोड पे सो जाएंगे लेकिन आएंगे, बाहर जो खुला जो मैदान है वहां सो जाएंगे लेकिन हम आएंगे, हमें आना है। और कई ऐसे होते कि वहां गर्म पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, वहां मिलेगा कि वहां मिलेगा, वहां ठहरे वो मिलेगा तब हम, ऐसा नहीं पाए। भगवान की बात है ना, ये बात कहीं भी मुझे बैठ करके सुनने को मिले, इसकी प्रायोरिटी होवे तो बाकी सब गौण हो जाता है। अपने बाबूजी वाले जी ने बताया था ना, ट्रेन में जाते समय ऊपर बैठे थे, वहां बैठ के केवल रवि किरणों से पूजा ली थी ना, तो वो स्वाध्याय भवन का वहां बन गया ना, वहां लिख के बनाई तो भाव बन गए ना, स्पेशली सब व्यवस्था हो गए, थोड़ा एसी हो, थोड़ा पंखा ढीला चलता हुए, फिर हम समय साथ खोल करके स्वाध्याय कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। अरे जिसको समय सार का रस आवे ना, उसको ये सब सुविधाएं अपने आप गौण हो जाती है, वास्तव में बात तो ये है। और कल मैंने जो भजन सुना ना, चैतन्य के दर्पण में वाला सुनाया था ना, तो जबलपुर में 8-10 महीने पहले गया था, तो अपने पंडित जी राजेंद्र जी भी बैठे थे सामने, तो ये भजन की बात आई थी वहां, फिर व्याख्यान पूरा हुआ, फिर पंडित जी से बातचीत हुई, मैंने बोला कि ये भजन ऐसे ऐसे, तो पंडित जी ने बताया कि ये भजन मैंने बनाया है, और उन्होंने ये बताया कि जब मैं देवलाली जा रहा था, बीच में वो देवलाली जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मैंने ये भजन बनाया, माने जिसको अंदर में ये आत्मा की बात पसंद आती है ना, और रास्ते में हो घर में हो शेविंग करते हो हर एक जगह वही बात, आते फिरते सबके साथ डिस्कस करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तब तो वहां से अपनी जो मन पसंद ये जो अपना भेद विज्ञान वाली जो बात, प्रज्ञा छेनी वाली बात, समय सार की बात, उसका ही जिसको रस होता है वही करते हैं। बनारसीदास जी हैं सामने, आपने सुना होगा शायद, वेद ज्ञान की गाथा है, बनारसीदास जी रजनी भाई एक दफे नदी के किनारे गए, तो धोबी कपड़ा धो रहा था ऐसा ऐसा करके नदी के किनारे, बनारसीदास जी ने देखा तो उन्होंने एक छंद लिखा, क्योंकि कपड़े धोने के लिए साबुन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और कपड़ा गंदा तो होना चाहिए ना, तब तो साफ करना, तो उन्होंने छंद लिखा, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर्यात्मा धोवे निज गुण चीर। क्या समझे, कौन सा साबुन, वेद ज्ञान साबु भयो, कौन से मॉल में मिलता होगा भाई अनुज भाई, बॉम्बे में तो बड़े बड़े फॉरेन में तो और भी मॉल होंगे, आप पूछना कि हमें वेद ज्ञान नाम का साबुन चाहिए, गूगल भाई में सर्च करना, हाँ मोना शिविर में जहाँ गुरुदेव श्री की बात जहाँ जहाँ चलती है ना, वहाँ भेद ज्ञान का साबु वहाँ मिलता है। भगवान के समोह शरण में भेद ज्ञान का साबु मिलता है। वेद ज्ञान साहु भयो समरस निर्मल नीर, नीर पानी, कपड़े धोने के लिए पानी। हाँ तो आत्मा में राग द्वेष की गंदगी है ना, उसके धोने के लिए तो के साबु समरस निर्मल ने समता भाव, राग द्वेष के परिणाम विषम भाव है और वितरागी भाव है वो सम भाव है, समता रस। वेद ज्ञान साहु भयो समरस निर्मल नीर, दो भी अंतरात्मा, समझ गए ना, अंतरात्मा माने कौन, साधक जीव, सम्यक दृष्टि साधक। दो भी अंतरात्मा दोवे निज गुण चीर, दोने निज गुण माने पर्याय में राग द्वेष की मलिनता है, वेद ज्ञान का साबुन समता जल और ये सम्यक दृष्टि अंतरात्मा वो मलिनता को ये प्रज्ञा छेनी द्वारा साबु द्वारा छेनी दो टुकड़ा कर दिया, ऐसा कहे राग और ज्ञान का। और यहाँ कहते हैं साबु वो मलिनता को चारित्र के दोष को धोने का काम करता है। मुझे तो इसके लिए मान लिया जाए कि बनारसी दास जी को धोबी के यहाँ वेद ज्ञान दिखता है, और ये प्रवचन में मैंने दृष्टांत दिया ना भी, तो कुछ ऐसे भी होंगे नहीं होंगे। पंडित जी ने शैलेश भाई ने अच्छा किया, तीन दिन से धोबी के यहाँ कपड़ा लाने में भूल गया था। अच्छा दृष्टांत में आ गई कि धोबी के पास दो तीन दिन से कपड़े धीरे भूल ही गया था, इसको यहाँ धोबी का बाप आई ना तो उसको वो धोबी दिखता है, उसको मंदिर में धोबी दिखता है, और ज्ञानियों को धोबी के यहाँ ज्ञायक दिखता है। फर्क तो इतना है भाई। देखो पढ़ते हैं ऐसी है सब बातें, तो भाई सर्वा सिद्धि की देव पूरा जीवन पर्यंत चर्चा क्यों करते हैं, अपने राजेंद्र जी ने लिखा ना है ना, जिसकी चर्चा है इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जब एक रतन अनमोला है फिर रतना कर कैसा होगा, जिसकी चर्चा है इतनी सुंदर, इतनी चर्चा इतनी सुंदर, वे सुंदरतम कैसा होगा, जब ये ज्ञान में ज्ञेय बनेगा तो फिर उसकी तो बात ही क्या करना भाई, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु। इसलिए बार बार ये गाथा में कहते कि प्रज्ञा छेनी पटको, प्रज्ञा छेनी। तीन चार साल हो गया हिम्मत नगर में मैंने ये गाथा ली थी, तो मेरे एक रिलेटिव भी हैं वो दस लक्षण में वैसे रेगुलर नहीं आते थे, अभी तो दे चुके हैं उनका, तो दस लक्षण में आते थे, तो प्रज्ञा छेणी चलन, ज्यादा शास्त्र का कोई अभ्यास भी नहीं था, सात दिन तक चला तो घर पे आके बोले कि शैलेश भाई रोज प्रज्ञा छेणी पटकने पटकने के, पटकने कब वाले कब पटकने वाले है, रोज प्रज्ञा छेणी पटको पटको पटको, कब प्रज्ञा छेणी पटकने का प्रोग्राम है। देखो पढ़ते हैं, कम से कम ये इतने दिनों में आपने प्रज्ञा छेणी नाम का शब्द तो ख्याल आ गया मेरे साथ, जीवन पर्यंत प्रज्ञा छेणी तो याद रह जाएगी, बराबर है ना, कि हम देवलाल आए थे ऐसे प्रज्ञा छेणी जैसी कुछ गाथा चली थी और गुरुदेव जी के प्रवचन उसके पर चले थे, इतना तो कम से कम आपने धारणा ज्ञान में चला गया, धारणा में चली गई अपनी बात, ये धारणा में चली गई ना तो कल दो मतलब दो महीने के बाद में स्मृति में भी आ सकती है, धारणा में गई तो स्मृति में आएगी, स्मृति माने याद आती है, अब धारणा में ही नहीं गए तो स्मृति में क्या आएगा, समझ में आती है कि नहीं बात। देखो और ये सब बातें पाप का उदय आता है ना, तो ये बहुत बातें याद आती है, काम में आती है, मैं नहीं चाहता कि आपके पाप के उदय आए, लेकिन ज्ञानियों को तो पुण्य का उदय हो पाप का उदय हो वो तो निरंतर उदय स्वरूप अपने
आत्मा की उनको तो वैल्यू है, लेकिन ये समझाते हैं अपन। अहमदाबाद में जब भूकंप आया ना, सभी मंदिर पैक जाते थे। अहमदाबाद में भूकंप आया तो सभी मंदिर पैक, किसी को कहने के लिए नहीं जाना पड़ा, बेटा मंदिर जाओ, बेटा मंदिर जाओ, बेटा मंदिर जाओ। सबको डर इतना लगता था कि फिर से ऐसा ऐसा हुआ तो हम तो गए, सब भगवान की शरण में चले गए थे। मुझे तो मात्र इतना पता है कि पाप का उदय आता है तो सबको भगवान याद आते हैं। तो तूने ये भगवान आत्मा की बात अंदर में स्टोर की होगी ना, तो कल ऐसी कोई परिस्थिति हो गई, बुखार आ गया या कैंसर हो गया और कोई तकलीफें हो गई, तो उस वक्त तूने ये संस्कार डाले होंगे, तो ये टॉनिक, ये संजीवनी, ये औषधि काम में आएगी। ये बड़े बड़े जो डॉक्टर वगैरह जो इंजेक्शन दवाई वगैरह देंगे ना, ये डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं, क्योंकि हम जाना वगैरह की जगह होता है ना, कि ये जो भाई सुना रहे थे ना पेशेंट को, हम तो बाहर के उपचार करते हैं, लेकिन ये जो भाई सुना रहे थे वास्तव में बात तो यही अच्छी है, उन लोगों को भी अच्छी बात लग के दो पांच मिनट सुन लेते हैं तो भी। लिखा ना समय सार में कितनी शक्तियां बताई है, 47 कहने की, बाकी तो कितनी है। और ये जो मेडिकल क्या ना दवाई होती है ना, 250 पावर की, 500 पावर की, पावर बोलते हैं ना, तो मेरे में कितने पावर है। देखो तो 144 कलश में आया ना, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिन्तामणिरेशयस्मान् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्नाश परिग्रहेण। अमृतचंद्र आचार्य देव अमृत लीला व्यास है, जिनको ये चैतन्य चक्रवर्ती चैतन्य चिंतामणि उपलब्ध हो गया, वो ज्ञानी जी बाहर के पदार्थों की वांछा क्यों करे। जिसके पास पारसमणि आ गया वो सोने की वांछा क्यों करे, क्योंकि पारसमणि तो लोहे को सोना बनाने वाला है, वो सोने की वांछा क्यों करे। ऐसे जिसे चैतन्य चिंतामणि हाथ में आ गया ना, वो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की वांछा नहीं करता है। 6 खंड की बात तो छोड़ो, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की भी वांछा नहीं करता। क्यों बताया था ना, मैं तो उसको देने वाला हूं, वो तो एक समय की पर्याय है। ज्ञानी किमनस्य परिग्रहेण, सम्यक दृष्टि के कितने अंग है उल्लास भाई, कितने अंग है सम्यक दृष्टि के, निशंकित और उसके बाद में कौन सा है, निकांक्षित, कांक्षा खत्म हो गई, नहीं है कांक्षा, क्यों कांक्षा रहेगी। ऐसा है भाई, देखो पढ़ते हैं टीका का तीसरा पैराग्राफ है, देखो दूसरा पैराग्राफ 494 पेज। आत्मा और यहां प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, हो नहीं गए, हो रहे हैं तो अत्यंत भिन्न, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण, भेद विज्ञान का साबुन नहीं है इसके पास, इसके अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हो। माने मैं रागी, मैं मकान वाला, मैं दुकान वाला, मैं काला, मैं गोरा, मानो वे एक चेतक ही हो। ऐसा जान, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है, माने अज्ञानी ऐसा मानता है, जिसे टोटल मंदी शास्त्र के शब्दों में कहें प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया है, बस अपने को वैसा ही मानता है, समझता है। उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेड़ा जा सकता है, इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हो, आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की, दोनों दोनों के निश्चित लक्षण हैं, दोनों के अलग अलग, दो अलग अलग चीज हैं। आत्मा और बंध के नियत स्व लक्षणों की सूक्ष्म अंतःसंधि में, सूक्ष्म अंतःसंधि दृष्टांत दिया था ना, आंख में जो मोतिया बिंदु है, तो जो डॉक्टर होता है ना, वो क्या निकाल देता है, उसमें से मोतिया निकाल देता है ना, तो उसके साथ में आंख का थोड़ा पार्ट, आंख के जो अच्छे पार्ट है वो आ जाए, तो अपने को भी बिठा के साहब एक खींचना है लो मैं खींच दू, नहीं निकालना मैं खींच दू, तो उसके लिए उसका इस प्रकार का नॉलेज, एक्सेसरीज वगैरह जो कुछ भी होते इंस्ट्रूमेंट, बराबर सावधानी से वो जो कचरा है वो कचरे को क्या कर देता है, अलग कर देता है और उसको अलग कर देता है, दोनों अलग अलग ही थे ना, लेकिन बताया ना उसमें डालना बिल्कुल ध्यान से अलग करते हैं। इसी प्रकार राग और ज्ञान दोनों कैसे है, अलग अलग है, लेकिन सूक्ष्म संधि है और उनको अलग करने के लिए क्या करना, देखो आत्मा और बंध के नियत स्व लक्षणों की सूक्ष्म अंतःसंधि में, अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, सावधान होकर पटकने से माने टोटल मुझे शब्द शब्द करें, स्व का अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश स्व में नहीं मिलाना, बराबर उसका ज्ञान करके ये ज्ञायक और ये रागादि विकल्प, ये दोनों अलग अलग, ये आश्रव तत्व है और मैं चेतन तत्व हूँ। गुरुदेव जी ने दृष्टांत दिया था ना, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको जो अलग करते हैं तो उसमें बीच में रग, गुरुदेव ने पूछा रग रग माने क्या, किसी ने बताया धारी धारी, तो अंदर में सुरंग डालते हैं, सुरंग और दारू, दारू डालते हैं, दारू खाना जो होता है ना दारू, और फिर उसमें वाट लगाते हैं, अलग दोनों हो जाते हैं, लेकिन रग को देखकर ऐसा करते हैं तो दोनों तो अलग अलग थे कि नहीं थे, तो दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे ज्ञान और राग एक हुए नहीं है, अज्ञान के कारण उसे एक हो गए ऐसे लगता है, तो अलग करने का साधन क्या, ये प्रज्ञा छेनी डालने पर, सूक्ष्म अंतःसंधि उसमें प्रज्ञा छेनी डालने पर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और यही हमारे कुंद कुंद आचार्य भगवान ने किया, और उन्होंने बताया कि हमने तो यही किया है, अमृतचंद हमने भी यही किया, अनंत ज्ञानी कि हमने यही किया, आप भी यही करो, उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। दौलत राम जी ने छठा में बहुत अच्छी पंक्ति कही इसके लिए, जिन परम पैनी सुधि छे, छठा निकाल, जिन परम पैनी सुधि छे नी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। 294 का था वहां मिल जाएंगे छड़ा में, अनंत ज्ञानियों का एक मत है, अज्ञानी के अलग अलग मत है। आत्म सिद्धि में वो निकालो तब तक यहां ध्यान रखो, छठी ढाल जिन परम पैनी वाली निकालो तब तक ध्यान। आत्म सिद्धि में जो पात्र जीव है वो गुरु से बार बार पूछता है कि आत्मा है कि नहीं है और उसका अनुभव कैसे हो गए, छः पद है, अपन उसमें नहीं जाएंगे, अपन शंका करता है, सदगुरु उसकी समाधान करते हैं, उस शिष्य को बोधि बीज की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा छेनी डालता है, उसके पहले वाली एक गाथा है, वहाँ गुरु ये कहते हैं, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो, मुझे तो ये बात इसकी याद आई कि अनंत ज्ञानी का एक मत होता है, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवियत्र समायम धरी मौनतायम कही सहज समाधि मायम। सदगुरु ने इसकी जो छह शंका थी समाधान किया और सदगुरु कहते हैं अनंत ज्ञानियों का ये मत है, धरी मौनतायम कही, ऐसा कह करके गुरु तो क्या हुए, मौन अपने स्वरूप में गुप्त हुए, सहज समाधि माय। अब पात्र जीव था, गर्जू जीव था, प्रज्ञा छेनी डालने की तैयारी वाला, तो तुरंत उसकी गाथा के बाद में आया वहां क्या कहते हैं, सदगुरु नाम उपदेश थी आयूं अपूर्व भान। निमित्त उपकार, सदगुरु नाम उपदेश थी आयूं अपूर्व ज्ञान। अपूर्व ज्ञान उगाड़ ज्ञान नहीं, परलक्षी अपूर्व ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, प्रज्ञा छीनी वेद ज्ञान। सदगुरु नाम उपदेश थी आयूं अपूर्व ज्ञान। अब देखो, निज पद निज माही लयूं वा, निज पद निज पद निज पद निज माही लयूं दूर थयूं अज्ञान। अज्ञान चला गया, राग और ज्ञान में अभिन्नता थी वो टूट गई। निज पद निज माही, सदगुरु में निज पद नहीं, सदगुरु में सदगुरु ने निज पद बताया और मैंने निज पद को ग्रहण कर लिया तो गुरु के प्रति अहो अहोकार जिन वर्णो कुंद नो ध्वनि दिव्य नो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो गुरुदेव कहां नो सहजे आवाते आए बिना रहते नहीं है। अरे नौ मिनट समय है साहब, समय भी हो गया है, दो मिनट कुछ नहीं देगा। छठवीं धातु, बस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आठ नंबर आठ नंबर बस बस ये आठ नंबर आ गया। अब उसके थोड़ा सा ऊपर चित्र देख लो, थोड़ा सा चित्र में आपको छेनी दिख रही है, छेनी दिख रही है, थोड़ा ऊपर ले लो भैया, दिखते हैं छेनी, छेनी से दो टुकड़े किए, जो आत्मा देखा ना शरीर ऊपर जो कर्म गागामी भाव और अंदर में चेतन तत्व प्रज्ञा छेनी। अब गाथा को पढ़ते हैं। जिन पर जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी तारी अंतर वेदिया वर्णादि अरूप रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज परम पैनी, परम माने तीक्ष्ण, पैनी तीक्ष्ण धार वाली, तीक्ष्ण धार परम पैनी कौन, परम पैनी तीक्ष्ण धार वाली कौन, सुबुद्धि छेनी। तो जैसे वो लकड़े को टुकड़ा करना हो ना, लकड़े का टुकड़ा, तो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो कैसी होनी चाहिए, धार वाली तो होनी चाहिए ना, दो टुकड़ा। ऐसे ज्ञान और राग को अलग करना है तो उपयोग को अत्यंत सूक्ष्म करना पड़ेगा। गुरुदेव श्री जिसके लिए कहते हैं भाई आ मार्ग मा, इस मार्ग में आमा वधारे क्षयोपशमनी जरूर नथी, यथार्थ रुचि नहीं जरूर है। क्या कहा, ज्यादा क्षयोपशम की जरूरत नहीं, यथार्थ रुचि की जरूरत है, उपयोग को सूक्ष्म करना है। देखो, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि, ये वर्णादि वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। प्रज्ञा छेनी आ गई ना 294 गाथा, तो फिर क्या हुआ देखो और कहते हैं, निज माही निज के हेतु निज कर, निज माही निज के हेतु निज कर। जैसे थोड़ी बात के नियम सार की 38 गाथा, उपाधे अपन उपा आत्मा ने आत्मा उपाधे, निज पद निज माही लय आत्म सिद्धि की गाथा, निज माही निज के हेतु निज कर। फिर क्या लिखा है, आप को आपे गयो, राग को आपे गयो, मकान को आपे गयो, ऐसा लिखा है, आप को आपे गयो। फिर गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के मझार कछु भेद न रहयो। वा ये गृहस्थी थे, पहले बताया था ना गृहस्थी थे, नहीं हम तो परिवार वाले भी ऐसे ही थे, रोजाना के 60 कलश तैयार करते थे, डेली 60 कलश तैयार करते थे, काम एक बाजू भी एक बाजू छाप खाने में काम और पास में शास्त्र रखते रोज कंठस्थ करते थे, गाथा याद करते थे रोज। देखो, गुण गुणी
ज्ञाता ज्ञान माने आत्मा गुणी और ज्ञान गुण, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के अंदर में ज्ञाता ज्ञान, बाहर की तो छोड़ो कहते ज्ञान नु ज्ञान ये पण नहीं, परने परने जानवा वाली बात तो छोड़ो, ज्ञान नु ज्ञान एम ही नहीं, जहाँ ज्ञान ज्ञात क्या गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, समझ में मैं स्वग्नि ये स्वग्नि और मैं ज्ञाता मैंने ज्ञान के द्वारा मैंने स्वग्नि को जाना, समझे ना, जानने वाला ज्ञाता, जानने में आया वो ज्ञे और किसके द्वारा के ज्ञान के द्वारा, लेकिन अनुभूति काल में भाति न द्वैत में हुआ, अनुभव के काल में कोई द्वैत भाषित होता नहीं है, नयो की लक्ष्मी उदय नहीं होती है, क्या फिर क्या है, प्रमाण अस्त को प्राप्त होता है, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हमें कुछ पता नहीं चलता है, ज्यों ज्यों साधक है त्यों तहां बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है, दूसरी बात तो छोड़ो, जिस आत्मा के अनुभूति के विकल्प चलते थे वो आत्मा के संबंध के विकल्प भी चले जाते हैं अनुभूति के काल में, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रहो, इस प्रकार से ऐसी प्रज्ञा छीनी कोई बाहर में नहीं मिलती है, गुरुदेव जी ने हमें यही बताया है जीवन पर्यंत ये प्रज्ञा छीनी कैसे पटकना वो भी विधि बताई है, राग और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं और अपने जो स्वभाव की महिमा आए मैं ही परमात्मा हूँ, बस हूँ परमात्मा, जो गुरुदेव शॉर्ट एंड स्वीट बदबू लांगू याद न रहे तो पर थी खस स्वमा वस आव से अतिंद्रिय आनंद और रस, पर थी खस राग थी खस स्वमा वस परमात्मा, और आएगा अतिंद्रिय आनंद का रस आसे टुंकू ने टच सॉल्ट एंड स्वीट सभी जीव, इस प्रकार से प्रज्ञा छेनी पर पटक करके मोक्ष मार्ग आरंभ करके कृत कृत्य दशा को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात पूर्ण करते हैं।